मुख्य समाचारों में सिडनी में एक और कोविड 19 मामले की रिपोर्ट के बाद न्यू साउथ वेल्स में सार्वजनिक परिवहन पर मास्क अनिवार्य। 50 से अधिक लोगों के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण प्राप्त करने के लिए एक नया मेडिकेयर लेवल बी। और भारत में 73 दिन बाद 8 लाख से कम हुए एक्टिव केस। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। आज शाम 5 बजे से अगले 5 दिनों के लिए ग्रेटर सिडनी में सार्वजनिक परिवहन पर मास्क अनिवार्य होगा। सिडनी में इंडोर सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क पहनने की सलाह है। सिडनी में कोविड 19 का एक नया स्थानीय मामला दर्ज हुआ है। अपने 50 के दशक में ये व्यक्ति, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान चालक दल के लिए ड्राइवर था, वो एक मूल सकारात्मक मामले के रूप में एक ही समय में बोंडाई जंक्शन वेस्टफील्ड में भी था। न्यू साउथ वेल्स के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट का कहना है कि ये चिंताजनक है कि ये व्यक्ति एक क्षणिक संपर्क के माध्यम से वायरस प्राप्त करता है, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है।
एंड ऑब्वियसली माय कंसर्न लेवल हैज गॉन अप अ लिटिल बिट टुडे बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट आई एम अवेयर दैट अ शॉपिंग यू नो ट्रांसमिशंस अकर्ड मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड इन अ शॉपिंग सेंटर एंड आई अंडरस्टैंड दैट पीपल मे नॉट हैव ऑल रिलीजियसली चेक्ड इन पीपल मे नॉट बी कॉन्शियस दैट यू वेंट शॉपिंग और इवन कॉन्शियस व्हिच settings and that's why I'm asking for particular vigilance.
Premier Gladys Berejiklian ka kehna hai ki ye naye suraksha upay sahi hain.
It is evolving and I think the public gets that. If suddenly there's a number of cases that emerge which we didn't expect from unlinked sources, well then that will cause us concern and we'll have to go further. At this stage we feel what we've done and said is enough and the public does respond. You notice as you're moving around that public, you know, everyone self-regulates.
Victorian स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलिया के नए कोविड 19 वैक्सीन निर्देशों को अनुकूल रूप से अपना सकते हैं, लेकिन उन्हें कॉमनवेल्थ से पर्याप्त फाइजर खुराक नहीं मिल पा रही है। फाइजर को अब 60 साल से कम उम्र के लोगों को देने के लिए कहा गया है, जो पहले से ही सीमित आपूर्ति में है, और इससे और अधिक दबाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि फाइजर की और खुराक ऑर्डर पर है, पर उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विक्टोरिया के आवंटन में कटौती की गई है। विक्टोरिया के परीक्षण कमांडर जेरोन वीमर का कहना है कि राज्य अनुकूलन तो कर सकता है, लेकिन आपूर्ति की कमी एक चुनौती बनी हुई है।
Although it's, you know, it's a little bit frustrating when you're running the state system that we now have more people who are going to be switching over to Pfizer and we have so little Pfizer available, as soon as we see more Pfizer coming through, then to some extent we can recalibrate the program. Certainly here in Victoria, we can step across and make this Pfizer switch very easily, but we need a vaccine in order to do that.
विक्टोरिया में आज स्थानीय रूप से ग्रहित एक मामला आया है, जो पहले के केस का करीबी संपर्क है। फेडरल सरकार का कहना है कि उसने विशेष रूप से 50 से अधिक लोगों के लिए एक नया मेडिकेयर आइटम बनाया है, ताकि उनके लिए उनके कोरोना वायरस टीकाकरण को प्राप्त करना आसान हो सके। इसे मेडिकेयर लेवल बी आइटम के रूप में जाना जाता है और ये डॉक्टरों को कोविड 19 अपॉइंटमेंट्स के लिए 50 से अधिक आयु के लोगों को बल्क बिल करने में सक्षम करेगा। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि डॉक्टरों ने मेडिकेयर के माध्यम से मरीजों को अतिरिक्त सहायता दिए जाने की पैरवी की थी।
Decision around their first dose or completion of their second dose is something that the GPs have supported and advocated and which the Prime Minister readily accepted and authorised immediately today. That item is live and available immediately.
Labor नेता Anthony Albanese का कहना है कि COVID-19 टीकों पर सलाह में बदलाव का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का टीकाकरण रोल आउट धीमा बना रहेगा। फाइजर को 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सिफारिश वैक्सीन बनाने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही फाइजर की आपूर्ति बाधित हो गई है। श्री अल्बिनीसी का कहना है कि फेडरल सरकार का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को सुरक्षित करने और उसके उत्पादन करने पर इतना जोर देने का निर्णय ये एक और उदाहरण है, जिसे वो एक असफल वैक्सीन रोल आउट कह सकते हैं।
Put all its eggs in the AstraZeneca basket, and now those chickens are coming home to roost. This is a real problem going forward. because whilst we don't have an effective rollout of the vaccine and whilst we don't have effective national quarantine, we'll continue to have breakouts.
Queensland आगामी स्कूल छुट्टियों के दौरान लोगों को राज्य से बाहर रखने के लिए और अधिक नियम ला रहा है. नवीनतम नियम में पूर्व सिडनी में वेवर्ली को कोरोना वायरस हॉटस्पॉट घोषित करना शामिल है. इस क्षेत्र में रहे कोई भी यात्री यदि वो क्वींसलैंड की यात्रा करते हैं तो उन्हें होटल संगरोध में रहना होगा. ये नियम कल शनिवार 1 बजे से लागू है. राज्य स्वास्थ्य मंत्री इवेट दात ने भी क्वींसलैंड से सिडनी में कहीं भी जाने की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. मेलबोर्नियंस भी कम से कम एक और सप्ताह के लिए क्वींसलैंड सीमा बंद होने से स्कूल की छुट्टियों में वहां जाने से चूक सकते हैं. और विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन का कहना है कि विक्टोरिया से सिडनी की यात्रा करने वालों को भी अपनी यात्रा के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए. 34 वर्षीय बाइकी बिलाल हमजे की मृत्यु हो गई है और इसे पुलिस ने सिडनी के CBD के बीचों बीच एक निष्पादन शैली की हत्या कहा है. बिलाल ब्रदर फॉर लाइफ के संस्थापक और गोल्बन सुपरमैक्स इनमेट बासम हमजी के कज़न हैं. बिलाल का घटनास्थल पर यानी सर्कुलर की के पास ब्रिज स्ट्रीट पर ही कई गोलियां लगने के कारण इलाज किया गया था, लेकिन सेंट विंसेंट हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई. होमसाइड स्क्वाड कमांडर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट डैनी डॉरथी का कहना है कि पुलिस इस संभावना को देख रही है कि शूटिंग बाइकी गुरोहों के बीच प्रतिद्वंद्वता का परिणाम थी.
This was a brutal execution style murder and was carried out in a busy street in the middle of Sydney CBD. It was extremely fortunate that members of the public were injured. Detectives will now explore a number of inquiries including ongoing conflict between rival families and organized crime networks.
एक संगरोध सुविधा के लिए संघीय सरकार की मंजूरी के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया लौटने की अनुमति दी जा रही है. एडिलेड के उत्तर में पैराफील्ड हवाई अड्डे की मौजूदा इमारतों का इस्तेमाल 160 छात्रों को क्वारंटीन करने के लिए किया जाएगा. CBD में मेडी होटल का उपयोग विदेशों से लौटने वाले ऑस्ट्रेलियन लोगों द्वारा किया जाता रहेगा. दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मुख्य जन स्वास्थ्य अधिकारी निकोला स्पियर का कहना है कि ये सुविधा छात्रों के लिए उपयुक्त है, हवादार है और उन्होंने एक विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल के विकास का वादा किया. बचत को बढ़ावा देने और फीस में कटौती के लिए बनाए गए सुपर कानूनों को संसद में पारित कर दिया गया है, लेकिन कुछ उद्योग समूह चिंतित हैं कि वो अच्छे से अधिक नुकसान अधिक करेंगे. ऑस्ट्रेलियन कर्मचारी वर्तमान में अक्सर अनजाने में कई छोटे छोटे खाते खोलते हैं और कंपनी के डिफ़ॉल्ट बीमा के लिए साइन अप करते हैं जिसमें कई शुल्क लगते हैं. गुरुवार को संसद में पारित नए नियमों के तहत 1 नवंबर से नौकरी बदलने पर कर्मचारी अपने मौजूदा सुपर फंड के साथ रहेंगे. ट्रेजरर जॉस फ्राइडनबर्ग का कहना है कि 1992 में सुपर अनिवार्य होने के बाद से ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है. उनका कहना है कि इसके लागू होने के बाद उपभोक्ता $17 बिलियन से अधिक की बचत की उम्मीद कर सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी है कि यदि देश जल और भूमि प्रबंधन पर तत्काल कार्यवाही नहीं करते तो सूखा अगली महामारी बनने का जोखिम रखता है. संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में पाया गया कि इस सदी में कम से कम 1.5 बिलियन लोग सीधे तौर पर सूखे से प्रभावित हुए हैं और इसकी आर्थिक लागत लगभग $164 बिलियन आंकी गई. UN सेक्रेटरी जनरल की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए विशेष प्रतिनिधि मैमी मजिटोरी ने स्काई न्यूज़ UK को बताया कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल हैं.
The cascading impact beyond the first impact is across sectors, across skills, and then finally, if a drought happens in one or two of the major production areas of the four crops, rice, wheat, maize and soy at the same time, it can really ignite a global food insecurity. So that's why we think that drought could be the next pandemic.
और भारत में 73 दिन के बाद 8 लाख से कम हुए हैं एक्टिव केस। भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,480 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1,587 मरीजों की इस वायरस से मृत्यु भी हुई है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी कमी देखी जा रही है। पॉजिटिविटी रेट यानी संक्रमण दर में भी गिरावट देखी जा रही है, ये 3.24% पर है। अब तक भारत में वैक्सीन की 26,99,60,399 डोज दी जा चुकी हैं और टेस्टिंग की बात हो तो एक दिन में 19,29,476 टेस्ट हुए हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 75 सेंट और भारत के 55.84 रुपये के बराबर है। खेल समाचारों में, साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की शुरुआत आज से होनी है, लेकिन लग रहा है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो सकता है। वेदर चैनल और एक वेदर के अनुसार साउथहैम्पटन में मैच के पांचों दिन ही बारिश होने की संभावना बताई गई है। विराट कोहली ने WTC फाइनल की पूर्व संध्या पर कहा कि 1-5 दिन के फाइनल के विजेता को वास्तविक अर्थ में सर्वश्रेष्ठ टीम कहना मुश्किल है। जैसा कि विदित ही है, ICC की हालिया टेस्ट रैंकिंग के हिसाब से भारत और न्यूजीलैंड दुनिया की 2 शीर्ष टीम्स हैं। और अब मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। होबार्ट में 1-2 बौछारें, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 13 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री। सिडनी में बौछारें रहेंगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।